4 दिसंबर रविवार, दिन भर के सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के निशाने पर पाकिस्तान, कहा पैसा मत दो चरमपंथियों को रोक लो।
पाकिस्तान इज जेनरसली प्लेज्ड $500 million फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान।
कितनी सफलता मिली है अफगानिस्तान को संवारने के सम्मेलन को, करेंगे विश्लेषण। 100 वुमेन सीरीज में आज सुनिएगा कश्मीर में कट फ्लावर का कारोबार शुरू करने वाली रुबीना तबस्सुम की कहानी।
पैसा जरूरी था तो मैं बैंक के पास एक प्रपोजल लेकर गई तो बैंक हैज रिफ्यूज्ड मी कि मैं एक औरत थी।
संडे दिन भर में आज मुलाकात फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन से, खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में बोलते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पड़ोसी मुल्कों से गुजारिश की है कि क्षेत्र में आतंकवाद के खात्मे के लिए हर जरूरी कदम उठाएं। समझा जा रहा है कि दोनों का इशारा पाकिस्तान की ओर था। अशरफ गनी ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद बेहद गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो $50 करोड़ अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए देने का वादा किया है, बेहतर होगा कि वो इस रकम का इस्तेमाल आतंकवाद को नियंत्रित करने में करे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का अफगानिस्तान से करीबी रिश्ता है और उसकी मदद करना भारत का मकसद है। सोमालिया में सेना ने दावा किया है कि उसने इस्लामिक स्टेट के कब्जे से कंडाला नाम का शहर छुड़ा लिया है। खबरों के मुताबिक ये शहर एक महीने से भी ज्यादा समय से इस्लामिक स्टेट के कब्जे में था और अब आईएस विद्रोही पास के पहाड़ों में भाग गए हैं। कंडाला सोमालिया का पहला शहर है जिस पर आईएस ने कब्जा कर लिया था। इन विद्रोहियों के नेता अब्दी कादिर मुमिन पहले चरमपंथी संगठन अल शबाब में शामिल थे, बाद में वो इससे अलग होकर इस्लामिक स्टेट से जुड़ गए। मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का जनसंहार हो रहा है और इसे फौरन रोकने की ज़रूरत है। कुआलालंपुर में रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति समर्थन जताने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें नजीब बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वो म्यांमार की नेता आंग सान सू ची को कड़ा संदेश देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि बस अब बहुत हुआ। नजीब बोले, मैंने अपने विदेश मंत्री से कहा कि वो आंग सान सू ची से बात करें। इस पर सूची ने उनसे कहा कि अगर आप मलेशिया और म्यांमार के आपसी रिश्तों के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, लेकिन अगर आप रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा उठाना चाहते हैं तो मैं बात नहीं करूंगी। ये तो गलत बात हुई, हमें हर मामले पर बात करनी चाहिए, ऐसे में आसियान का क्या मतलब। ये थे मलेशियाई प्रधानमंत्री नजीब रजाक के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन स्थित मानवाधिकार संस्था का कहना है कि सीरिया के इदलिब प्रांत में हुए हवाई हमलों में 14 आम नागरिक मारे गए हैं जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। सीरिया में मानवाधिकारों की निगरानी करने वाली संस्था ने कहा है कि एक रूसी विमान ने ये हमले किए। रूस ने पिछले महीने ही ऐलान किया था कि वो इदलिब प्रांत में बड़ी मुहिम छेड़ रहा है। फिनलैंड के इमात्रा शहर में एक संदिग्ध ने शहर की मेयर और दो महिला पत्रकारों की हत्या कर दी है। तीनों महिलाएं एक रेस्तरां से निकल रही थी जब हत्यारे ने उन पर गोली चलाई। पुलिस ने बताया कि इस शख्स का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है और जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने भागने का कोई प्रयास नहीं किया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं निखिल रंजन। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भारत और अफगानिस्तान दोनों ही देशों ने आतंकवाद के चरमपंथ के मसले पर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान के भीतर से संचालित चरमपंथी समूहों को राज्य की ओर से समर्थन दिए जाने के अपने आरोपों को दोहराया है। भारत ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन चरमपंथ को लेकर उसके आरोपों का निशाना भी पाकिस्तान ही था। उधर पाकिस्तान का कहना है कि इस तरह एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। पूरे ब्यौरे के साथ रोहित जोशी।
हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के पहले दिन भारत और अफगानिस्तान ने तकरीबन 40 देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी वाले इस अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल फिर एक बार आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को घेरने के लिए किया है। इस सम्मेलन में भागीदारी करने पाकिस्तान के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज भी अमृतसर आए हुए हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान को आर्थिक मदद दिए जाने की पेशकश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी मदद किसी भी तरह से अफगानिस्तान की जनता के लिए तब तक मददगार नहीं हो सकती जब तक शांति बहाल नहीं हो जाती। उन्होंने पाकिस्तान पर देश के भीतर चरमपंथी समूहों को प्रशय देने के आरोप लगाए।
पाकिस्तान इज जेनरसली प्लेज्ड $500 million फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए उदारता के साथ $50 करोड़ की सहायता देने का वादा किया है। अजीज साहब, इस राशि का आतंकवाद के खिलाफ बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन शांति बहाल किए बगैर कोई भी मदद हमारे लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। पाकिस्तान के सैन्य अभियानों में अफगानिस्तान में सक्रिय पाकिस्तानी चरमपंथी गुटों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन चुनिंदा तरीके से। सरकार का रवैया बिखरा हुआ है। कुछ चरमपंथी नेटवर्कों को सरकार की ओर से प्रशय दिया जा रहा है। हाल ही में तालिबानी आंदोलन के एक प्रमुख नेता ने कहा भी है कि अगर पाकिस्तान की ओर से तालिबान को समर्थन ना हो तो वो एक महीना भी नहीं टिक सकते। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के शब्द। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर तो नहीं पर इशारों में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि चुप्पी और निष्क्रियता से आतंक और उसके मालिकों को बढ़ावा मिलेगा।
वी मस्ट डेमोंस्ट्रेट स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव विल टू डिफीट टेरर नेटवर्क्स।
हमें आतंकी समूहों को हराने के लिए एक मजबूत साझी इच्छा शक्ति दिखानी होगी, जिसके चलते खून खराबा हो रहा है और दहशत फैली हुई है। आतंकवाद अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और आतंकी घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी हमारे पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में शांति के लिए इस तरह का सहयोग काफी नहीं है, इसे कार्रवाई में भी बदलना होगा। केवल आतंकी समूहों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि उनके खिलाफ भी जो आतंकियों को पनाह देते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और वित्तीय मदद पहुंचाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। सम्मेलन के बाद भारतीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री हिकमत करजाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत हिंदी में करते हुए कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच मजबूत दोस्ती बनी रहे।
यहाँ पंजाब में और अमृतसर में आके बहुत खुशी हुई। ये मोहब्बत, ये मेहमान नवाजी जो आपने हमें दिखाई, हम हमेशा के लिए ममनून थे और ममनून रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दोस्ती के बारे में सिर्फ एक चीज़ कहूँ, वो ये कि हमारी दोस्ती हमेशा आबाद रहे और ये तारीखी दोस्ती हमेशा ऐसे ही मजबूत और मजबूतर रहे।
इधर सम्मेलन से इतर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और अफगान राष्ट्रपति गनी के बीच एक द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। साथ ही राष्ट्रपति गनी और सरताज अजीज ने भी मिलकर मौजूदा हालातों पर चर्चा की।
रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की शुरुआत दशकों से जंग में घिरे रहे अफगानिस्तान को सुधारने के मकसद से हुई थी। 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत रहे जयंत प्रसाद से मैंने पूछा कि क्या कॉन्फ्रेंस, आज का सम्मेलन भी जो था वो आरोप प्रत्यारोप में ही घिरा रहा, और क्या पाकिस्तान अकेला पड़ रहा है?
पाकिस्तान की मुसीबत ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ये काम करती है कि हर जगह समस्या खड़ी करती है, जैसे अफगानिस्तान में किया है, और फिर ये दिखाने की कोशिश करती है कि समस्या का समाधान भी वही कर रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ करनी असंभव है, तो इसमें भारत ने पहल तो कोई की नहीं, और भारत ये तो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान किसी कोने में खड़ा हो जाए। अगर पाकिस्तान का बर्ताव ठीक होता है तो उसमें फिर प्रॉब्लम कहाँ रहती है? अफगानिस्तान में जो भी समस्याएं हुई हैं वो इस वजह से हुई हैं कि दहशतगर्दियों को पनाह और समर्थन पाकिस्तान से मिल रहा है और वहाँ के आदमी के द्वारा मिल रहा है, और जो तालिबान की रूपरेखा अब बन गई है, जो नया उनका लीडरशिप है मुल्ला उमर के मरने के बाद, और वो भी हकानी नेटवर्क के हाथ में उनके सैन्य बल का बागडोर आ गया है, तो उसके बाद ये कहना कि तालिबान जो समस्याएं अफगानिस्तान के लिए खड़ा कर रहा है वो उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, ये तो अफगान लीडर्स को पसंद नहीं है ये बात सुनना, क्योंकि ये बात झूठी हो जाती है। तो जो अशरफ गनी जी ने कहा, इस वजह से कहा।
हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जिस मकसद के लिए बुलाया गया था, आज जो नेताओं की बातचीत हुई है, जो चर्चा हुई है, उसे लगता है कि उसका मकसद पूरा हो रहा है?
देखिए, हार्ट ऑफ एशिया 5 साल पहले शुरू हुआ था। पाकिस्तान को कई मौके थे अफगानिस्तान को दुरुस्त करने के लिए। जब नजीबुल्ला को हटाया गया सत्ता से 1992 में, तब एक मौका था, क्योंकि सात जो दल थे इस्लामिस्ट पार्टीज के, सब पेशावर से काम कर रहे थे। उस समय कुछ ठीक से काम नहीं हुआ और 3-4 वर्ष के बाद फिर तालिबान को स्थापित किया गया काबुल में। तालिबान की संरचना पाकिस्तान में हुई थी। पाकिस्तान का उनके साथ था अच्छा तालमेल था, ये मैं नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से कंट्रोल था, और तब भी नहीं सुधार हुआ। फिर 2001 में एक मौका लगा, जब अमेरिका पर हमला हुआ तो उन्होंने तालिबान के खिलाफ एक्शन लिया, क्योंकि अलकायदा को उन्होंने शरण दिया हुआ था वहाँ। उस समय भी पाकिस्तान को मौका था कि एक पन्ना पलट देते इतिहास का और नए सिरे से काम करते, पर उन्होंने भी वो जो है डबल फेस नीति अपनाई कि कहना कुछ करना कुछ, और इस वजह से अब देखिए उसके 15 वर्ष बीत गए हैं, अभी भी हालात वही हैं जो नवंबर 2001 में थे। तो क्या क्या जाए, सब लोग पेशो पेश में हैं, क्योंकि पिछले इतिहास को अगर देखें तो पाकिस्तान का जो रवैया रहा है, उस रवैये से अफगानिस्तान सुधर नहीं सकता है, चाहे हार्ट ऑफ एशिया हो या ना हो, चाहे दूसरे कई प्रयास किए जाएं या ना किए जाएं। और अगर पाकिस्तान उसमें मदद नहीं करता है तो अफगानिस्तान में सुधार लाना बड़ा मुश्किल है।
अफगानिस्तान में सुधार पाकिस्तान की मदद के बगैर नहीं हो सकता, और साथ ही उसके रवैये में अगर कोई बदलाव नहीं आता है तो भी ऐसा करना मुश्किल होगा, कह रहे थे अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत जैन प्रसाद।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
ये BBC रेडियो है और आप सुन रहे हैं दिन भर निखिल रंजन के साथ। BBC की एक विशेष सीरीज चल रही है आजकल 100 वुमेन, जिसमें हम आपको कुछ महिलाओं की कहानी सुना रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी मुश्किलों को पार पाकर अपना एक मुकाम हासिल किया। भारत प्रशासित कश्मीर के बड़गाम में रहने वाली रुबीना तबस्सुम भी एक ऐसी ही महिला हैं। इन्होंने कमर्शियल फ्लोरिकल्चर का काम किया। वैसे आम फूलों और कट फ्लावर में लोगों के लिए अंतर करना मुश्किल है। कट फ्लावर यानी वो फूल जिन्हें साज सजावट में इस्तेमाल किया जाता है, और वे कुछ लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, खुशबूदार बने रहते हैं। लेकिन इस काम को करना रुबीना तबस्सुम के लिए इतना आसान नहीं था। क्या चुनौतियां पेश आई उनके सामने, जानने के लिए हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने उनसे बात की।
मेरी शादी जल्दी हो गई, 12th के बाद ही हो गई, और मेरे बच्चे भी हुए, तो छोटे छोटे बच्चे घर में थे, तो मैं सोच रही थी कुछ करूं। तो इसी दौरान एक प्रोग्राम आ रहा था रेडियो पर, मंजिलें और भी है, तो उसमें वो EDI एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवा रहे थे, तो मैं भी EDI चली गई। 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था ऑन कमर्शियल फ्लोरिकल्चर, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है फ्लोरिकल्चर के बारे में वो वहाँ पर सीखे। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, लैंड थी, कट फ्लावर्स जो है पॉलीग्रीन हाउसेस में कर रहे हैं, ओपन कल्टीवेशन नहीं हो सकती है इसकी। यहाँ पर सर्टन वैरायटीज़ है, उनको हम पॉलीग्रीन हाउसेस में अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी करते हैं। तो उसके लिए स्ट्रक्चर्स चाहिए थे, शेडनेस चाहिए थे, UV फिल्म्स चाहिए थी, तो उसके लिए पैसा ज़रूरी था। तो मैं के पास एक प्रपोजल लेकर गई, तो बैंक हैज़ रिफ्यूज्ड मी कि मैं एक औरत थी, और दूसरा कि ये प्रोजेक्ट इस टाइप का पहला प्रोजेक्ट था, इकोनॉमिकली वायबल हो सकता है कि नहीं। जो मेरे हस्बैंड है उसने मेरी हेल्प की, उन्होंने कंज्यूमर लोन ले लिया, तो मैंने थोड़ा बहुत काम शुरू कर लिया। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मैंने मेरी सर्च लगी कि मैं कहाँ ज़मीन ले लूँ। जब मैंने काम शुरू कर लिया तो धीरे धीरे मुझे सब काम खुद ही करने पड़ते थे, क्योंकि ये एक वेंचर था जिसमें मुझे हर रोज़ किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत होती थी, तो मुझे अक्सर काम, ज़्यादा काम मुझे खुद ही करना पड़ता। मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि मैं थोड़े बहुत अनएम्प्लॉयड यूथ को यहाँ एब्जॉर्ब कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक रूरल एरिया में रहती हूँ, माइंडसेट जो है वो लोगों का चेंज नहीं हुआ है, तो नोबडी विल एक्सेप्ट यू एज अ बिजनेस लेडी। लेकिन ऐसा पहली बार था कि कोई लड़की एक बिजनेस करने जा रही है, वो भी एक एग्री बिजनेस। तो इसमें लोग देखते हैं कि लेडी है कैसे कर पाएगी, लोग कानाफूसी कर रहे हैं या कुछ आपस में बातें कर रहे हैं, क्या मजबूरी है उसकी, बच्चे छोड़कर निकल रही है, घर में काम का उसका तो किचन का काम है, वो किचन संभाल लेती, उसको क्यों जाना था बाहर। इस सब को इग्नोर करके अपना माइंड बना लिया कि मुझे ये काम करना है चाहे कोई भी मुश्किल हो। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती थी कि मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते थे नहीं आप नहीं कर पाओगी। बाद में जाने जब मैंने एक्सपेंड कर लिया तो लोग वहाँ से ही अब मुझे ऑफर दे रहे हैं कि हमारी ज़मीनें हैं आप जी ले लें। बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड जो है वो जेके बैंक की तरफ से 2006 में मुझे मिला है। यहाँ पर ये अनरेस्ट है 5 महीनों से चल रहा है, तो उससे इफेक्ट हुआ है सारी इकोनॉमी को। एक तो ये पेरिशेबल आइटम है, फ्लावर्स इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, तो इनको मार्केट प्लेस तक जल्दी जल्दी पहुंचाना ज़रूरी होता है। घर से निकलना मुश्किल था, रोड्स बंद थे, तो इसकी वजह से सारा माल यहाँ पर ही ख़राब हो गया, तो जिसकी वजह से हमारी शॉप्स जो है मेरी दो आउटलेट्स है दोनों बंद थी, तो फ्लावर्स भी नहीं जा पाए कहीं पर मार्केट प्लेस पर, तो उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया। ये अनसर्टेनिटी रहती है कि कैसे शुरू करें, फिर से अगर शुरू करें, अगर फिर से शुरू होगा, फिर से इन्वेस्टमेंट, फिर से रिटर्न्स नहीं आएंगे तो खसारे में आ जाएंगे, तो इसकी वजह से बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं।
सजावट में इस्तेमाल होने वाले फूलों का कारोबार करने वाली रुबीना तबस्सुम से बात की थी सुशीला सिंह ने। और अब बात संडे दिन भर की। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर आई फिल्म कहानी 2 की, जिसमें मुख्य भूमिका में दिखी अभिनेत्री विद्या बालन। फिल्म में विद्या दुर्गा रानी का किरदार निभा रही हैं और सभी समीक्षकों ने उनके अभिनय की तारीफ की है। बीबीसी संवाददाता वैभव दीवान ने भी उनसे बातचीत की है और ये लंबी बातचीत आज हम आपको सुनवा रहे हैं संडे दिन भर में।
हेलो,
मिनी को आखिरी बार जिंदा देखना है तो इस एड्रेस पे अभी इसी वक्त।
विद्या, कहानी 2 रिलीज हो गई है, जब से इस नई कहानी का ट्रेलर आया है तब से एक बस सी बनी हुई थी। क्या ये नई कहानी 2 पिछली वाली द ओरिजिनल कहानी को टक्कर देगी?
वो तो नहीं पता, क्योंकि विद्या बागची और दुर्गा रानी सिंह बहुत ही अलग लोग हैं, उनकी कहानियां बहुत अलग हैं। और जब हमने ठानी कि हम कहानी 2 बनाने वाले हैं तो हमने अपने आप से कह लिया कि हम कहानी से बेहतर फिल्म बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बस ये कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक बिल्कुल नई कहानी जिसमें किरदार अलग है, उनकी दुनिया अलग है। तो उस वजह से शायद हम लोगों ने अपने दिमाग में कभी ये कंपेयर नहीं किया कि अच्छा कहानी जैसी होगी क्या इसमें सस्पेंस क्या होगा वगैरह वगैरह। हर कहानी का अलग सस्पेंस होता है, हाँ सस्पेंस थ्रिलर जॉनर में है पर डिफरेंट फिल्म्स।
फिल्म डिफरेंट है पर टाइटल ऑलमोस्ट सेम है, तो किस मॉडल पर ये फिल्म बनी? ये एक फ्रेंचाइज है या सीक्वल, और इसका फायदा क्या होगा?
ये सीक्वल नहीं है, ये फ्रेंचाइज हो गया। तो फायदा ये है कि लोग कहानी से बहुत प्यार करते हैं तो उनमें बहुत उत्सुकता है कहानी 2 के लिए। ट्रेलर देखने के बाद वो और खुश हो गए, ये उत्सुकता बढ़ गई। नुकसान मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अगर फिल्म अच्छी है तो लोगों को अच्छी लगेगी, अगर अच्छी नहीं लगी तो देखिए नुकसान ही नुकसान है, तो उसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती।
विद्या, 2012 चार साल पहले आई थी कहानी, और इस कहानी 2 ये जो आई है इसके आने में टाइम कहाँ लग गया?
एक्चुअली कहानी के तुरंत बाद सब कहने लगे कि कहानी 2 बनाइए, तो हम भी जोश में आके कहानी 2 के लिए कहानियां सोचने लगे, मतलब शुजॉय लिखने लगे, तो वो लिखते थे मेरे पास आके सुनाते थे पर कुछ जमा नहीं, तो हमने कहा कि सीक्वल नहीं बनाते, ये सीक्वल की बात कुछ जम नहीं रही क्योंकि लोग कहानी से इतना प्यार करते हैं कि शायद जो हम जो भी करें कहानी जितना इम्पैक्ट नहीं आएगा।
बात तो सही है, फिर कैसे बढ़ी कहानी 2 की कहानी?
फिर पिछले साल वो आए मेरे पास और कहा कि याद है मैंने तुम्हें ये आइडिया नरेट किया था कहानी के तुरंत बाद, उस पर मैंने स्क्रिप्ट लिखी है पढ़ लो, मुझे लगता है ये कहानी 2 बन सकती है। तो मैंने कहा आप कहानी 2 क्यों, कुछ और ही नाम रख दो ना, तो वो बोले नहीं नहीं तुम पढ़ तो लो। तो मैंने पढ़ा और मुझे भी लगा कि हाँ, अगर कोई फिल्म कहानी टू कहला सकती है तो ये यही कहानी हो सकती है, क्योंकि ये दमदार है। और जब आप फिल्म देखेंगे तब आपके समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ।
विद्या, फिल्म कहानी टू से पहले आपकी और आपके डायरेक्टर सुजय घोष की कुछ अनबन सी हो गई थी, कैसा है आप दोनों के बीच ये रिलेशन?
हमारी या तो बहुत बनती है या फिर बनती ही नहीं है। और ऐसा ही कुछ हुआ, मैं दुर्गा रानी सिंह करने वाली थी, फिर मुझे वो फिल्म छोड़नी पड़ी, तो सुजय को गुस्सा आ गया और मुझे भी बहुत खराब लग रहा था कि मैंने फिल्म छोड़ी और वो भी सुजय की। पर उस वक्त मेरी तबीयत कुछ खराब थी तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी, पर मैं एक दूसरी फिल्म कर रही थी, हमारी अधूरी कहानी, जिसे भी मैंने छोड़ने की कोशिश की, पर वो फिल्म आगे चली गई, उसकी वजह से मेरी तबीयत सुधरने के बाद मैंने वो फिल्म कर ली। तो सुजय को शायद लगा कि अच्छा, उनकी फिल्म कर ली, मेरी फिल्म नहीं की। तो मैं भी झिझक रही थी उनसे बात करने के लिए, पर फिर एक दिन मैं उनसे मिली और 10 सेकंड के अंदर ऐसे लगा जैसे 1.5 साल बीता ही ना हो बीच में। यू नो, ऐसा ही लगा जैसे हम पहले एक दूसरे से बात करते थे, और 10 दिन के अंदर हमने डिसाइड कर लिया था कि हम कहानी टू बनाएंगे।
विद्या, एक टाइम था जब आप सॉलिड पीक पर थी, नो वन किल्ड जेसिका, कहानी, द डर्टी पिक्चर, सब सही चल रहा था आपके लिए, फिर एक सीरीज ऑफ फ्लॉप्स आई। ऐसे टाइम में जब लोगों ने आपको एडवाइस दी तो आपने उनको क्या कहा, विद्या तुम ऐसी फिल्म कर लो या वैसी फिल्म कर लो?
नहीं नहीं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे एडवाइस दे, क्योंकि सबको पता है कि मैं बेशर्म हूँ, कि मैं अड़ियल हूँ, मैं सुनती नहीं हूँ, मैं वही करती हूँ जो मुझे करना है। पर हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि यू नो, आपको कॉमेडी फिल्में नहीं करनी चाहिए, सब आपको इंटेंस फिल्मों में देखना चाहते हैं, सबका नज़रिया है। मैं आई अप्रिशिएट दैट पीपल आर इंटरेस्टेड एंड दे टेल मी, पर वो मानना ना मानना मेरे हाथ में है।
सही बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पर आप किस किस्म के रोल्स पसंद करती हो और कैसी फिल्में करने का मन है आपका?
मैं अलग अलग तरह के फिल्म्स करना चाहती हूँ, और कुछ चलेंगी कुछ नहीं चलेंगी, पर काम करते रहना चाहती हूँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं इंटेंस रोल्स पसंद करती हूँ, इंटेंस रोल्स मुझे पसंद करते हैं, पर अच्छा लगता है कि डायरेक्टर्स में ये भी विश्वास है कि मैं कॉमेडी कर पाऊंगी या अलग अलग जॉनर के फिल्म कर पाऊंगी।
विद्या, कहानी के सुपरहिट होते ही आपको ये टाइटल लेडी खान वाला मिला, कैसे लेती हैं आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स को?
ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट है, इसमें ज्यादा सच्चाई नहीं है, नहीं तो मेरी फिल्में भी खान्स जितनी बिजनेस कर लेती। उम्मीद करती हूँ कि किसी ना किसी दिन ये सच होगा, पर फिलहाल के लिए देखते हैं।
हाँ, नंबर्स तो नहीं, बट बज तो बन ही जाती है कि विद्या की फिल्म आ रही है, विद्या बालन इज बैक। हाँ, तो जब फिल्मी मार्केट आपकी फिल्म के रिलीज से पहले इतना तैयार होता है, तो क्या फिल्म को हिट कराने का प्रेशर, वो बोझ क्या आप खुद पर लेती हैं?
मैं वो लेती नहीं हूँ। आप बोझ मुझ पे डालोगे, मैं अगर उठाने को तैयार हूँ तभी तो मुझे वो महसूस होगा, मैं लेती नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, डर्टी पिक्चर और कहानी के बाद सब कहने लगे थे कि अरे आपके नाम पे तो फिल्में बिकती हैं, लोग थिएटर में आते हैं, वगैरह वगैरह। फिर 4 फिल्में लगातार नहीं चली। तो मेरा मानना ये है कि अगर फिल्म अच्छी है तो चलेगी, नहीं अच्छी है तो आप सिर पे खड़े हो जाओ, फिर भी नहीं चलेगी। बस उम्मीद हर फिल्म से जुड़ी हुई होती है कि फिल्म अच्छा करे, इसके यू नो आगे पीछे मैं नहीं सोचती कि अच्छा ओपनिंग क्या होगी, कितना, इस सब से एक्टर का कोई फायदा नहीं होता मेरे ख्याल से। प्रोड्यूसर को इस सब के बारे में सोचना चाहिए, हम लोग एक्टर्स हैं, मुझे एक्टिंग पता है और मैं दिलो जान लगा देती हूँ हर फिल्म में, और उससे मुझे खुशी मिलती है, उसके आगे मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती, तो मैंने छोड़ दिया सोच।
एक कॉम्प्लीमेंट जो शबाना आजमी से आपको मिला है वो ये है कि विद्या अगर स्टेज पर परफॉर्म करे, थिएटर करे, तो वो कमाल ही कर देगी, इस पर आपका क्या कहना है?
वो उनका बड़प्पन है, पर मैं बहुत खुश हो गई थी, बिकॉज मैं उनको बहुत बहुत मानती हूँ, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, पर थिएटर करने की मेरी हिम्मत नहीं है। लाइव ऑडियंस के सामने मतलब खड़े रहकर लाइन बोलना, मतलब मैं तो पानी पानी हो जाऊँ। मैं सबसे हमेशा कहती रहती हूँ कि मुझे जब तक ये दिलासा है कि मेरे पास रीटेक का ऑप्शन है, मैं खुश हूँ। अगर रीटेक नहीं है तो फिर मैं नहीं कर सकती।
पर विद्या, ऐसा भी नहीं है कि आप सभी फिल्म डायरेक्टर्स की फर्स्ट चॉइस हो। कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कमर्शियल फिल्में बनाते हैं, मसाला फिल्में, जैसे फराह खान हो गई, प्रभुदेवा हो गए या रेमो डिसूजा हो गए, ये लोग आपको कास्ट नहीं करते, ऐसा क्यों?
क्योंकि वो मुझे कोई फिल्म्स ऑफ़र नहीं करते. अगर ऑफ़र करते तो हाँ या ना की बात होती, पर आई थिंक जिस तरह की फिल्में मैं कर रही हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ. क्योंकि ज़्यादातर टिपिकली कमर्शियल फिल्म्स की जब हम सोचते हैं तो उसका एक पैटर्न होता है जिसमें हीरोइन के लिए ज़्यादा काम नहीं होता. उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता. जो लोग करते हैं बहुत अच्छा काम भी करते हैं उसमें, पर मुझे निजी तौर पे मज़ा नहीं आता.
विद्या, द डर्टी पिक्चर वो एक बायोपिक थी साउथ इंडिया की फिल्म एक्ट्रेस सिल्क स्मिता पर बेस्ड. उस फिल्म के बाद से कई लोग कहने लगे कि आप बायोपिक स्पेशलिस्ट हैं. क्या आप ऐसा मानती हैं?
नहीं, बहुत सारे बायोपिक्स ऑफर होते हैं मुझे, पर मैंने बहुत सारे बायोपिक्स रिजेक्ट कर दिए. कभी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी तो कभी डायरेक्टर के साथ वो बात नहीं बनी. पर एक बायोपिक जो मैं करना चाहती थी वो थी MS सुब्बलक्ष्मी पर, जो बनते बनते नहीं बनी क्योंकि कुछ लीगल इश्यूज हो गए. मीना कुमारी पे बायोपिक का कर पाना तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि मुझे वो ऑफ़र हुई थी सिल्क मतलब डर्टी पिक्चर के तुरंत बाद. पर तभी मैं एक एक्ट्रेस पे बायोपिक कर चुकी थी तो मैंने मना कर दिया. और इंदिरा गांधी पे जरूर करना चाहूंगी.
नो वन किल जैसिका और बॉबी जासूस भी बायोपिक टाइप्स ही थी, पर विद्या फिल्मों में एक्ट करना तो सही है, उनको बनाना डायरेक्ट करना उसके बारे में कभी आपने सोचा है?
बिल्कुल नहीं, मुझ में वो काबिलियत है नहीं और उसके लिए बहुत क्षमता की ज़रूरत पड़ती है जो मुझ में है नहीं. लोगों को संभालना पड़ता है जो मैं नहीं करना चाहती. बतौर एक्टर सब आपको संभालते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है.
एक हीरोइन की लाइफ शादी से पहले अलग, शादी के बाद अलग, पर मॉडर्न हीरोइंस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो करीना कपूर खान हो या विद्या बालन. लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर शादी इट सीम्स. बीबीसी एक मुलाकात पर मैं हूं वैभव, विद्या बालन है मेरे साथ. विद्या, लोग शादी के बाद काफी चेंज हो जाते हैं, उनकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं. आपकी शादी इंडिया के टॉप प्रोडक्शन हाउस के मालिक रहे सिद्धार्थ रॉय कपूर से हुई. कुछ चेंजेस जैसे औरों की लाइफ में आते हैं शादी के बाद, वैसे बदलाव आपकी लाइफ में भी क्या कोई?
देखिए, आती होंगी काफ़ी लोगों को, पर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे पास एक ऐसा सेटअप है जहाँ बहुत सपोर्ट है. और सिद्धार्थ और मैं दोनों बहुत व्यस्त रहते हैं काम में, तो हमने उसको बैलेंस करने का एक तरीका ढूंढ लिया है.
तो ये थी विद्या बालन और उनसे बात कर रहे थे वैभव दीवान. और अब आइए सुनते हैं कि खेल की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है आदेश कुमार गुप्त से.
जी निखिल, अगर चर्चा की जाए क्रिकेट की तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बैंकॉक में आयोजित किया गया महिला 2020 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया. फाइनल में भारत ने पाकिस्तानी महिला टीम को 17 रन से मात दी. पाकिस्तानी महिला टीम के सामने जीत के लिए 122 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उसकी खिलाड़ी पूरे 20 ओवर खेलकर 6 विकेट खोकर 104 रन ही बना सकी. पाकिस्तान की कप्तान बिस्मा मारूफ ने सबसे अधिक 25 रन बनाए. उनके अलावा जावेरिया खान ने 22 और आयशा जफर ने 15 रन बनाए. भारत की एकता बिष्ट ने 22 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने सबसे अनुभवी और भारत की पूर्व कप्तान बल्लेबाज मिताली राज के नाबाद 73 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 121 रन बनाए. एशिया कप पर भारत का कितना दबदबा है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी तक जितने भी संस्करण हुए हैं 6, सब में भारतीय महिला टीम ही विजय रही है.
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त खेल समाचारों के लिए. और अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, तो आइए प्रमुख समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं.
बीबीसी समाचार. अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में बोलते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पड़ोसी मुल्कों से गुजारिश की है कि क्षेत्र में आतंकवाद के खात्मे के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएं. सोमालिया में सेना ने दावा किया है कि उसने इस्लामिक स्टेट के कब्जे से कंडाला नाम का शहर छुड़ा लिया है. फिनलैंड के इमात्रा शहर में एक संदिग्ध ने शहर की मेयर और 2 महिला पत्रकारों की हत्या कर दी है. मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का जनसंहार हो रहा है और इसे फौरन रोकने की जरूरत है. ब्रिटेन स्थित मानवाधिकार संस्था का कहना है कि सीरिया के इदलिब प्रांत में हुए हवाई हमलों में 14 आम नागरिक मारे गए हैं. बीबीसी समाचार.
प्रमुख समाचार सुनाया प्रभात कुमार पांडे ने और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं अजीत सारथी. आपसे 1.5 घंटे बाद घटनाचक्र में फिर मुलाकात होगी. निखिल रंजन को दीजिए अनुमति. नमस्कार.